डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम। टुडेज एपिसोड ऑन ऊजेनेसिस। सबसे पहले हम ऊजेनेसिस की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। ऊजेनेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से मैच्योर ओवम फॉर्म होने की प्रक्रिया को ऊजेनेसिस कहते हैं। ऊजेनेसिस की प्रक्रिया को हम तीन फेज में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। पहला है बिफोर बर्थ, दूसरा आफ्टर प्यूबर्टी, तीसरा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वर्ष से पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं, प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या इवेंट्स होते हैं। देखा जाए तो इस ऊजेनेसिस के अध्ययन में सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे। गैमेट कैसे फॉर्म हुए, फिर वो अरेस्ट में चले गए, म्यूटिक अरेस्ट में चले गए, फिर प्यूबर्टी के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन हुए, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी इसी के अंतर्गत अध्ययन करना रहेगा, और फॉलिकुलोजेनेसिस कैसे हुई, फॉलिकल कैसे बना और फॉलिकल कैसे फॉलिकल से ओवुलेशन कैसे हुआ, कार्पस ल्यूटियम वगैरह, ये सब इस ऊजेनेसिस के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी के क्रम में पहला टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। इसके अंतर्गत देखा जाता है ऊजेनेसिस इज डिसकंटिन्यूअस एंड बिगिंस ड्यूरिंग फीटल लाइफ। जिस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस प्रोसेस थी, उसमें स्पर्म टिल डेथ तक बनते रहते हैं, उस प्रकार यहाँ नहीं होता। यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो जाती है और फीटल लाइफ में ही ये शुरू होती है। दूसरी बात है द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज बाई फिफ्थ मंथ ऑफ फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में फिफ्थ मंथ में ही टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये ऊजेनेसिस की विशेष बात है। ये प्रक्रिया किस प्रकार से, सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ में क्या क्या घटनाएं होती हैं। मेल और फीमेल प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स और सेक्स सेल गैमीट जर्म लाइन से प्राइमरी एक्टोडर्म तथा योक सैक की वॉल से होते हुए पोस्टीरियर बॉडी वॉल तक पहुंचते हैं। वहां पर गोनाड सेक्स कॉर्ड से गोनाड बनते हैं, उसमें पॉपुलेट होते हैं तथा विकसित होते हैं। गैमेट प्रकर्सर सेल से स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया में परिवर्तित होते हैं। इस समय ये 23 पेयर होते हैं। इस प्रकार गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण होती है, फिर स्पर्मेटोगोनिया व ओगोनिया बन जाते हैं। अब मियोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और क्रोमोसोम की संख्या 23 हैप्लोइड रह जाती है। फीमेल में सभी ओसाइट फीटल लाइफ में ही बन जाते हैं। यह फिफ्थ मंथ ऑफ इंट्रायूटरल लाइफ, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और उसके बाद ये डोरमेंसी में या म्यूटिक अरेस्ट में पड़े रहते हैं। प्यूबर्टी में, अब ये हुआ बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, प्यूबर्टी में पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से का नियंत्रण पिट्यूटरी पर और पिट्यूटरी से जीएनआरएस गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के कारण उनका डेवलपमेंट शुरू होता है तथा फुल्ली मैच्योर ओवम बनते हैं। ओवुलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है। यह प्रक्रिया फीमेल में डिसकंटिन्यूअस होती है। फीटस की ओवरी में टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट शुरू में ही बन जाते हैं। फीमेल जर्म सेल बना, उसमें माइटोसिस हुआ, सेक्स कॉर्ड में आया, ओगोनिया बना, ये सब प्रक्रियाएं गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत हुई। 12 सप्ताह के डेवलपमेंट में जेनाइटल रिज में सेवरल मिलियन ओगोनिया म्यूटिक प्रोफेज की स्टेज में आते हैं और डोरमेंट स्टेज में पड़े रहते हैं। क्या 12 सप्ताह के डेवलपमेंट में सेवरल मिलियन कितनी ओगोनिया, सेवरल मिलियन ओगोनिया म्यूटिक प्रोफेज की स्टेज में आ जाते हैं और डोरमेंट स्टेज में पड़े रहते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम कंडेंस रहते हैं तथा लार्ज एवं बाटरी हो जाते हैं। अब इनको जर्मिनल बेसिकल कहते हैं। ये म्यूटिक अरेस्ट में प्यूबर्टी तक रहेगा, म्यूटिक अरेस्ट में प्यूबर्टी तक रहना है इनको। इसलिए ये क्या कर लेते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस कर लेते हैं, लार्ज एवं बाटरी हो जाते हैं और इस स्थिति में इनको जर्मिनल बेसिकल कहते हैं। ये म्यूटिक अरेस्ट प्यूबर्टी तक चलता है तथा डीएनए प्रोटेक्शन के लिए वाटर इकट्ठा कर लेते हैं और कंडेंसेशन क्रोमोसोम का कर देते हैं, ये इनको जरूरत रहती है। यह ओसाइट सेक्स कॉर्ड से ड्राइव होने वाली सिंगल लेयर की स्केमस एपिथीलियल से ढका रहता है। ये ओसाइट कहाँ रहता है, ओवरी में रहेगा, ओवरी सेक्स कॉर्ड से फर्म होती है। जब तक पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक सेक्स कॉर्ड से एक सिंगल लेयर की स्क्वेमस एपिथीलियम निकलती से बनती है, उससे ये ढका रहता है। अब इसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। 5th मंथ में प्राइमोर्डियल फॉलिकल 7 मिलियन के करीब हो जाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। 5th मंथ में प्राइमोर्डियल फॉलिकल 7 मिलियन के करीब हो जाते हैं और वर्ष के समय 7 लाख से 2 मिलियन बचते हैं। कुछ इसमें से नष्ट हो जाते हैं। 7 मिलियन में से कितने, 7 लाख से 2 मिलियन तक बचते हैं और प्यूबर्टी तक पहुंचते ओनली 4 लाख बचते हैं। फीमेल साइकिल में हार्मोन्स, फॉलिकुलोजेनेसिस, ओवुलेशन, कंडीशन ऑफ यूटरस को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स ही ये सब कंट्रोल करते हैं। जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे, ब्रेन हाइपोथैलेमस से FSH क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन को नियंत्रित करेगा और फिर आगे ओवेरियन हार्मोन्स को आगे हम देखेंगे। ओवेरियन हार्मोन से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन, इन सब का नियंत्रण यद्यपि पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। तो ये हार्मोन्स फीमेल साइकिल में हार्मोन क्या करेंगे, फॉलिकुलोजेनेसिस, ओवुलेशन एंड कंडीशन ऑफ यूटरस। फॉलिकुलोजेनेसिस फॉलिकल्स को फॉर्म करना और फॉलिकल फॉर्म होने के बाद और ओवुलेशन की प्रक्रिया संपादित करना और यूट्रस की कंडीशन, यूट्रस की वाल को एंडोमेट्रियल वाल को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करना, ये सभी कार्य फीमेल में हार्मोन्स के द्वारा संपन्न होते हैं। जब मेनार्स शुरू होता है, जब गर्ल्स में मेनार्स या मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन हार्मोन मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करते हैं। फर्टिलाइज ओवम प्रतिमाह 1 गैमीट प्रोडक्शन करना है। यूट्रस से जो कि यूट्रस में इम्प्लांट और यूट्रस को इम्प्लांट से तैयार करना है, यहाँ पर क्या कार्य संपादित करना है, प्रथमा 1 गैमीट को प्रोडक्शन के लिए तैयार करना है और यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करना है इस साइकिल में। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई तो इसमें क्या होगा, प्रतिमाह एक ऊसाइट मैच्योर होता है और क्या होता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का प्रोलीफेरेशन होता है और क्या होता है, ओवुलेशन के द्वारा ऊसाइट रिलीज होता है। एंडोक्राइन कार्पस ल्यूटियम में फॉलिकल डेवलप होगा और यूट्रस में इम्प्लांट होगा, यह प्रक्रिया संपन्न होनी है। यदि इम्प्लांट नहीं हुआ तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम में स्लग होगा और इन्वोल्यूशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम होगा। यह पूरी साइकिल 28 दिन में पूर्ण होती है तथा मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियल शेडिंग शुरू हो जाती है। मेंसेज शुरू होने के 5वें दिन हाइपोथैलेमस से GnRH पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है जिससे टू हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं, कौन से, FSH और LH। यह बढ़ा हुआ GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ही फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू करता है। यही बढ़ा हुआ GnRH फॉलिकुलोजेनेसिस इन ओवरी में शुरू करता है और यही बढ़ा हुआ GnRH प्रोलीफरेशन इन यूट्रस एंडोमेट्रियल बाल में करता है। ये सभी कार्य GnH के द्वारा संपादित होते हैं। फिर क्या होता है, फिर फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू होता है। प्रतिमास 5 to 12 फॉलिकल में डेवलपमेंट शुरू होता है। 5 से 12 की संख्या में फॉलिकल को रिक्रूट किया जाता है कि आप जाइए और इस कार्य को संपादित कीजिए। इस दौरान प्राइमोर्डियल फॉलिकल के ऊपर जो सिंगल लेयर फॉलिकुलर एपिथीलियम होती है वह मोटी हो जाती है और स्क्वैमस क्यूबॉइडल हो जाती है। अब इसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल कब कहेंगे, जब उस पर सिंगल लेयर फॉलिकुलर एपिथीलियम बन जाएगी और स्केमल स्क्वैमस क्यूबॉइडल हो जाएगी तब उसको प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। ये ऊसाइट के फॉलिकल सेल असेलुलर मटेरियल होते हैं। ये जो ऊपर बना ये सभी असेलुलर होता है और ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। और एक सीक्रेशन निकलता है इससे और यही ऊसाइट की सरफेस पर इकट्ठा होता चला जाता है। इसी को हम जोना पेलुसिडा ओबम के ऊपर जो एक लेयर होती है, स्पर्म को जिसको भेदना पड़ता है, पेनिट्रेट करना पड़ता है, वो कठोर लेयर जोना पेलुसिडा की होती है। ये कौन सीक्रेट करता है, ग्लाइकोप्रोटीन, जो फॉलिकल के सेल्स होते हैं वो एक ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट करते हैं, वो इकट्ठा होता चलता है, उसी को हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये फॉलिकल सेल व ऊसाइट में बैरियर का काम करती है। फिर भी फॉलिकल सेल ऊसाइट को गैप जंक्शन और इंटरमीडिएट सेल जंक्शन से कनेक्ट किए रहती है, यानी फॉलिकल सेल ऊसाइट को तब तक कनेक्ट किए रहेगी जब तक वो फुल्ली मैच्योर नहीं हो जाएगा, उसके पूर्ण मियोटिक डिवीजन पूर्ण नहीं हो जाएंगे तब तक वो उसको कनेक्ट की रहेगी। तो कनेक्ट किससे की रहती है, गैप जंक्शन और इंटरमीडिएट सेल जंक्शन से कनेक्ट की रहती है। फॉलिकल के कुछ एक्सटेंशन जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट किए रहते हैं, ओवुलेशन से पहले तक ये जुड़े रहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल में 5 से 12 की संख्या में भी जो ये 5 से 12 फॉलिकल ओवुलेशन के लिए तैयार हुए थे उनकी एपिथीलियम प्रोलीफरेट करती है और ऊसाइट के ऊपर मल्टी लेयर्ड कैप्सूल बना लेती है। अब इसे ग्रोइंग फॉलिकल का नाम दिया जा सकता है, उसे जब हम कहते हैं ग्रोइंग फॉलिकल। इस समय कुछ कुछ का डेवलपमेंट रुक जाता है और डीजनरेट हो जाते हैं, कुछ एनलार्ज होते रहते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से फ्लूइड इकट्ठा करते रहते हैं और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाते हैं जिसे हम एंट्रम कहते हैं या बेसिकल फॉलिकल कहा जाता है। जब इसमें एंट्रम बन जाता है तब इसका नाम बेसिकल फॉलिकल हो जाता है। इसी समय ओवेरियम स्ट्रोमा का कनेक्टिव टिश्यू जो कि फॉलिकल को ढका हुआ था टू लेयर में डिफरेंशिएट हो जाता है। ओवेरियम स्ट्रोमा का कनेक्टिव टिश्यू जो कि फॉलिकल को ढके हुए था वो टू लेयर में डिफरेंशिएट हो जाता है, जिसमें से इनर लेयर को थीका इंटरना कहते हैं और आउटर लेयर को थीका एक्सटरना कहते हैं। ये दोनों लेयर वैस्कुलराइज हो जाती हैं। एक फॉलिकल, अब इनमें से जो 5 से 12 फॉलिकल आए थे, एक फॉलिकल डोमिनेंट हो जाता है, बाकी डिजनरेट हो जाते हैं। इसी को अब डोमिनेंट हो रहा है, इसी को प्राथमिकता मिलती है, यही नेता हो जाता है। फ्लूइड एब्जॉर्ब करता रहता है, बड़ा होता रहता है, बाकी बचे डिजनरेट हो जाते हैं और एट्रेसिया हो जाता है। ऊसाइट जो कि फॉलिकल सेल में मास से ढका रहता है, सेल के मास से ढका रहता है, उसे क्यूमुलस ऊफोरिकस कहते हैं। उसमें एंट्रम बढ़ता हुआ रहता है किंतु फॉलिकल सेल की लेयर से जुड़ा रहता है, फॉलिकल सेल एंट्रल कैविटी तथा फॉलिकल की बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। इसी लेयर को मेम्ब्रेना ग्रेन्यूलोसा कहते हैं। यह लार्ज स्वलोन फॉलिकल अब मैच्योर वेसिक्यूलर फॉलिकल कहलाता है, या इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है। ओबम के ऊपर जोना पेलुसिडा की लेयर रहेगी और जो कैविटी रहेगी मास सेल के अंतर्गत वो एंट्रम रहेगा, और एक लेयर कोरोना रेडिएटा की एक लेयर रहती है, और फिर उसके ऊपर सेल्स अंदर जो सेल रहते हैं वो थीका इंटरना, और उसके ऊपर जो सेल रहते हैं वो थीका एक्सटरना। ये सभी क्यूमुलस ओफरिकस, ये ग्राफियन फॉलिकल में सब संरचनाएं पाई जाती हैं। जोना ओवम रहेगा सबसे अंदर, उसके ऊपर जोना पेलुसिडा की लेयर रहेगी, फिर थर्ड नंबर कोरोना रेडिएटा, फिर एंट्रम फोर्थ, फिर थीका इंटरना, थीका एक्सटरना। ये एक फॉलिकल की स्ट्रक्चर में सभी रचनाएं पाई जाती हैं। अब FSH एवं LH लेवल के कारण ओवुलेटरी सर्ज, पिंब ग्रंथि वृद्धि द्वारा मियोसिस का रिजम्पशन तथा ओवुलेशन होता है। यानी अभी तक जो डोरमेंसी में पड़े थे वो डोरमेंसी के बाद में मियोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होने शुरू होती है। तो वो क्यों होती है? FSH और LH लेवल के बढ़ने के कारण से। FSH LH लेवल ओवुलेटरी सर्ज के द्वारा मियोसिस रिजम्पशन होता है और उससे ओवुलेशन होता है। मेंस्ट्रुएशन के 13वें या 14वें दिन यूटेराइन एंडोमेट्रियम भी प्रोलीफरेशन फेज, यूटेराइन एंडोमेट्रियम की प्रोलीफरेशन फेज खत्म हो रही होती है, और उस दौरान FSH व LH लेवल तेजी से बढ़ता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लूटिनाइजिंग हार्मोन तेजी से बढ़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के कारण ओवुलेटरी सर्ज तथा ग्राफियन फॉलिकल के ऊसाइट में मियोसिस के लिए रिज्यूम करता है। यह ओवुलेटरी सर्ज FSH-LH के 15 घंटे बाद दिखता है। FSH-LH रिलीज हुआ और उसके 15 घंटे बाद ओवुलेटरी सर्ज शुरू हो गया, यानी डिंब ग्रंथि की वृद्धि होना शुरू हो गया। अब जर्मिनल लेयर की मेम्ब्रेन ब्रेक होने लगती है और 20 घंटे में क्रोमोसोम मेटाफेज की स्थिति में आ जाते हैं। मीसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, क्रोमोसोम मेटाफेज की स्थिति में आ गए तथा सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है। अब क्या बन गया, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हो गया। सेकेंडरी ओसाइट में तुरंत सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो जाता है और ओवुलेशन के 3 घंटे पहले सेकेंड मियोटिक डिवीजन में अरेस्ट हो जाता है, यानी सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद ये यहाँ कुछ देर के लिए प्रक्रिया रुक जाती है। फिर क्या होता है, ओवुलेटरी सर्ज के FSSLH के कारण क्यूमुलस ओरिफिस एक्सपेंड करता है और जर्मिनल वेसिकल के टूटने के समय ही क्यूमुलस सेल जो कि ओसाइट को घेरे थी, सराउंड किए थी, सेल कनेक्शन टूट जाता है और डिसएग्रीगेट हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ओसाइट एवं लूज क्यूमुलस सेल्स एंट्रल कैविटी की डिटैच हो जाती है। कुछ घंटे में क्यूमुलस सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सीक्रेट करता है जिसमें हायोल्यूरोनिक एसिड होता है। यह क्यूमुलस सेल को कई गुना एक्सपेंड करता है। यह क्यूमुलस एक्सपेंशन की प्रक्रिया आगे की प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या क्या निभाती है, नंबर एक तो रेगुलेटरी मियोटिक प्रोसेस को करती है, ओवुलेशन करती है और मास ऑफ मैट्रिक्स बनाती है तथा एक्सपेंड क्यूमुलस सेल्स को एक्सपेंड करती है। ओसाइट को ओविडक्ट, ओसाइट से रिलीज होने के बाद में कहाँ तक आएगा, फेलोपियन ट्यूब तक आएगा, तो ओविडक्ट तक ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है तथा अर्ली फर्टिलाइजेशन के लिए प्रयास हेल्प करती है। ये इसका कार्य है। ओवुलेशन डिपेंड ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ फॉलिकल बाल। अब ओवुलेशन के लिए ओवम पूरी तरह से तैयार हो गया, क्यूमुलस ओफरिकल एक्सपेंड हो गया, सेल डिसइंटीग्रेट हो गए, अब फॉलिकल बाल को ब्रेकडाउन होना है। ये कब होगा, FSHLH की ओवुलेटरी सर्ज के 3 घंटे बाद फॉलिकल वैस्कुलराइज हो जाता है। FSHLH की ओवुलेटरी सर्ज के 3 घंटे बाद फॉलिकल वैस्कुलराइज हो जाता है, पिंक एंड ओडोमोटस हो जाता है। फॉलिकल ओवरी की सरफेस की तरफ डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ओवुलेशन होने को होता है तभी फॉलिकल की प्रोजेक्टिंग वाल थिन होने लगती है, एक निपल शेप का प्रोट्रूजन निकलता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। ओबम रिलीज में ये 3 कारण माने गए हैं। पहला है टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय स्मूथ मसल सेल्स, जो मसल सेल्स हैं उनके टेंशन के कारण से। दूसरा रिलीज ऑफ कोलेजन डिपेंडिंग एंजाइम। तीसरा है अदर फैक्टर में फाइब्रिनो ब्लास्ट, इनकी वजह से ये ओवुलेशन तुरंत हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, फॉलिकल रप्चर हुआ और फॉलिकल रप्चर धीरे से होता है, ऐसा नहीं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ। उसके साथ में फॉलिकल के साथ में क्यूमुलस सेल, हायल्यूरोनाइडेज मैट्रिक्स, फॉलिकुलर फ्लूड, ये भी साथ में रहता है। क्या क्या साथ में रहता है, क्यूमुलस सेल्स रहते हैं, हायल्यूरोनाइडेज रहता है, मैट्रिक्स रहता है और फॉलिकुलर फ्लूड रहता है। ये सभी चीज़ें ओवरी की सरफेस पर आते हैं और FSHLH की ओवुलेटरी सर्ज के कारण 38 घंटे बाद ओवुलेशन होता है। ये सभी चीज़ें एम्ब्रिएटेड माउथ ऑफ ओविडक्ट के द्वारा ओवरी की सरफेस की ओर आ जाते हैं। यहाँ से क्यूमुलस एवं ओसाइट एम्पुला की तरफ मूव करता है। एम्पुला में ओसाइट 24 घंटे तक वायबल रहता है, यानी कि 24 घंटे बाद फर्टिलाइज होने की क्षमता खो देता है। 24 घंटे तक यहाँ पड़ा रहता है, उस दौरान यदि स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ये ओवुलेशन की प्रक्रिया संपूर्ण हो गई। उसके बाद जो फॉलिकल्स, जिस फॉलिकल से ओवम निकला वो रप्चर्ड एंडोक्राइन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम बनाता है। उसको क्या कि जो फॉलिकल है वहाँ से कार्पस ल्यूटियम बनता है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका आगे निभाएगा। तो क्या करेगा, ओवुलेशन होने के बाद रप्चर फॉलिकल की वॉल प्रोलीफरेट होना शुरू हो जाती है और कार्पस ल्यूटियम की ल्यूटियल सेल बनाती है। कार्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, यह स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम को एम्ब्रियो इम्प्लांट करने के लिए तैयार करता है। यदि एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है और 14 दिन बाद यह एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको के कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। फॉलिकल सेल द्वारा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होते हैं, ये यूटेराइन इवेंट एवं साइकिल को नियंत्रित करते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5वें दिन फॉलिकल एवं थीकल सेल से स्ट्रोमल ईस्ट्रोजन सीक्रेट होने लगता है। ईस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट हुआ, फॉलिकल के थीकल सेल से। इससे एंडोमेट्रियल वाल प्रोलीफरेट होती है तथा 5 से 9वें दिन तक ओवुलेशन होने के बाद कार्पस ल्यूटियम की थीकल सेल से ईस्ट्रोजन सीक्रेट होता रहता है। ल्यूटियल सेल से, उसके थीकल सेल से तो हो गया कौन सा, ईस्ट्रोजन, और ल्यूटियल सेल से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता रहता है। इसको के ल्यूटियल प्रोजेस्टेरोन कहते हैं जो कि यूटेराइन बाल को थिक करता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाता है, वेस्कुलेचर को इंक्रीज करता है। यदि यूटरस में एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता है तो 13 दिन में एंडोमेट्रियम की सीक्रेटरी फेज खत्म हो जाती है। इसी समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल समाप्त होने पर कार्पस ल्यूटियम श्रिंक कर जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है जो एंडोमेट्रियम डेवलप हुई थी तथा प्रोजेस्टेरोन आधारित थी डी जनरेट हो जाती है तथा स्लग होना शुरू हो जाता है और 4 से 5 डे के मेंस्ट्रुएशन फेज में 35 ml ब्लड, अनफर्टिलाइज ओवम, ये सभी आउट होते हैं, निकलते हैं और नई साइकिल शुरू हो जाती है। इस प्रकार से ऊजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। थैंक यू।